हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। श्लोक संख्या 44 बोले। एवं सम्मोहयन विष्णु
विमोहं विश्वमोहनम्
स्वयैव मायया जोपि
स्वयमेव विमोहितः।
हरे कृष्ण। इस प्रकार भगवान विष्णु को अपने मोह में डालने के चक्कर में ब्रह्मा स्वयं मोहित हो गए। मोह अज्ञान को कहते हैं, भ्रम को। वर्तमान कालिक अवस्था जो मनुष्य समाज में है वह मोह जनित अवस्था है। मोह जो नहीं है उसको समझना, जो हमारी स्थिति नहीं है उसको दूसरे रूप में समझना। जैसे अंधेरे में रास्ते में पड़े हुए रस्सी को सर्प समझ लेना, वो तो सर्प नहीं है लेकिन सर्प समझकर भयभीत होना, भागना, यह मोह है। श्रीमद् भागवतम के महात्म्य का वर्णन करते हुए शुद्ध गोस्वामी कहते हैं कि यह श्रीमद् भागवतम सुनने से कृष्ण में प्रेम उत्पन्न हो जाती है और शोक मोह और भय चला जाता है। शुरू में श्रीमद् भागवतम के 7वें अध्याय में इसको सुनने मात्र से कृष्ण में प्रेम उत्पन्न हो जाता है और इसका साइड इफेक्ट है कि शोक मोह भय समाप्त हो जाता है। जस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्ति रुत्पद्यते पुनसाम शोक मोह भयापहा। जस्याम, जिस श्रीमद् भागवतम के सुनने से परम पुरुष कृष्ण में प्रेम उत्पन्न हो जाती है। जस्याम वही श्रूयमाणाम, वही मतलब निश्चित रूप से कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। जस्याम वही श्रूयमाणायाम, श्रूयमाणा मतलब सुनने वाला, सुनना प्रारंभ किया उसी समय। चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि केवल सुनने का प्रयास किया, ठीक से नहीं भी सुन पाया, 1-2 अध्याय सुना, उतना से भी कृष्ण प्रेम उत्पन्न हो जाता है। और फिर एक एक श्लोक एक एक अध्याय सुन ले तो कहना ही क्या है, कि मुता वो शोक मोह और भय को समाप्त कर देते हैं। शोक मोह भय ये त्रिकालिक दुख को व्यक्त किया गया है। जो भूतकाल के अवस्था का स्मरण करके हम जो वर्तमान में दुखी होते हैं उसको शोक कहते हैं। जैसे किसी जवान बेटे की मृत्यु हो जाने पर उसके स्वभाव, उसके व्यवहार या उसके अभाव का अनुभूति करके जब हम दुखी होते हैं तो उसको शोक कहते हैं। तो कितना अच्छा था, 18 साल का लड़का कार दुर्घटना में मर गया, सोच सोच कर दुखी होते हैं। या अपने पत्नी का या अपने पति का वियोग हो गया तो शोक करते हैं। या कोई अपना प्रतिष्ठित पद छीन लिया गया, इलेक्शन हार गए, चीफ मिनिस्टर थे, शोक होता है। तो भूतकाल के सुखमय अवस्था खो जाने पर वर्तमान में जो चिंतन करके दुखी होते हैं उसको शोक कहते हैं। ये भूतकालिक दुख है। वर्तमान कालिक दुख अज्ञान जनित, जो हम अपने परिवार को, अपने अवस्था को अपना समझकर दुखी हो रहे हैं और उसको सजाने में बनाने में लगे हुए हैं, वह अवस्था मोह का है। जिसको हम अपना मान रहे हैं वो वास्तव में अपना है नहीं, भ्रम बस अपना मान रहे हैं। और उसके कारण हम दुखी हो रहे हैं, उसको ठीक रखना चाहते हैं। यह परिवार, गांव, समाज, ये देह कुछ भी अपना नहीं है, फिर भी इसको अपना मानकर इसके चक्कर में पड़े रहते हैं, इसको मोह कहते हैं। जैसे अर्जुन को महाभारत युद्ध के समय मोह उत्पन्न हो गया, वहां विरोध में खड़े लोगों को अपना संबंधी समझकर युद्ध से विरत हो गए, मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो उनको मोह कहा गया। तो अर्जुन मोह में पड़ गए और उस मोह को दूर करने के लिए भगवान उपदेश किए। और महाभारत युद्ध के बाद महाराज युधिष्ठिर को शोक हुआ था, अरे मैं बड़ा पापी हूँ, मेरे कारण इतने लोग मारे गए, मैं पद लोलुप हस्तिनापुर की राजगद्दी चाहने के लिए मैं कितने ब्राह्मणों की हत्या कराया, बच्चों की हत्या कराया, कितने युवतियों को विधवा कराया, मुझसे नीच कोई नहीं होगा, हाय हाय मेरे कारण भीष्म पितामह शय्या पर पड़े हैं, हाय मेरे नीच के कारण गुरु द्रोणाचार्य मारे गए, हाय हाय मैं अभिमन्यु के मृत्यु का कारण हूँ, अगर मैं इस तरह का लोभ नहीं किया होता तो अभिमन्यु जैसा युवक पुत्र नहीं मारा गया होता। इस तरह सोच सोच कर दुखी हो गए, इसको शोक कहते हैं। तो भगवत गीता का उपदेश करके भगवान अर्जुन का मोह दूर किए और भीष्म पितामह के समक्ष महाराज युधिष्ठिर को ले जाकर उनके द्वारा उपदेश करा करके महाराज युधिष्ठिर का शोक दूर किए। तो भूतकालिक सुख की स्मृति करके उसके अभाव की अनुभूति करके दुखी होना शोक है, वर्तमान में अज्ञान जनित भ्रम जनित अवस्था को मोह कहते हैं और भविष्य में होने वाले दुख की संभावना को भय कहते हैं। मैं नहीं कमाऊंगा तो मेरे परिवार का कैसे मेंटेनेंस होगा, मेरे बच्चे कैसे पढ़ेंगे, बेटी का विवाह कैसे होगा और मेरे खाने पीने की व्यवस्था होनी चाहिए, इसके लिए कुछ करना पड़ेगा, अथवा अकेले जाने पर कहीं कुछ हो सकता है, कोई चोर या कोई भूत प्रेत या कोई डाकू कुछ मुझे कर सकता है, ये सब संभावनाएं भय है। तो भागवत श्रवण की महिमा है कि केवल सुनने मात्र से शोक मोह भय समाप्त हो जाता है। ये तो अनुसंगिक फल है, मुख्य फल है कि कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है। तो भगवान को भ्रम में डालने के लिए ब्रह्मा जी एक व्यवस्था किए, अपने ब्रह्म मोहिनी शक्ति से भगवान को मोहित करना चाहे, भ्रम में पड़ जाए, अज्ञान में पड़ जाए, लेकिन वे बेचारे स्वयं मोह में पड़ गए। एवं सम्मोहन विष्णु मिमोहम विश्व मोहनम, विष्णु कृष्ण को कहते हैं। कभी कभी वैष्णवों से भी ये भ्रम हो जाता है कि कृष्ण और विष्णु में अंतर कर लेते हैं। द्विभुज मुरलीधर को कृष्ण और चतुर्भुज शंख चक्र पद्म गदाधर को विष्णु, यह सामान्य धारणा है, लेकिन वास्तविकता यह है कि विष्णु कृष्ण उनके नाम हैं और कुछ विशेष विशेषताओं के कारण ये नाम है। विष्णु का अर्थ होता है सर्वव्यापक, कण कण में निवास करने वाले, विभु और विष्णु एक अर्थ में होता है, सर्वव्यापक अर्थ में विष्णु शब्द का प्रयोग होता है, जो कण कण में है, हर जगह है, हर अवस्था में है, उनको विष्णु कहते हैं या विभु कहते हैं। और कृष्ण के एक विशेष विशेषता है, सर्वाकर्षक हैं, अपने रूप से, अपने गुण से, अपने वेणु से, अपने बोली से, अपने हर व्यवहार से जो सबको आकर्षित करें उनको कृष्ण कहते हैं। या जिनका सांवला सलोना घनश्याम सुंदर रूप है उनको कृष्ण कहते हैं, रंग के कारण और विशेष विशेषताओं के कारण उनको कृष्ण कहते हैं, सर्वाकर्षक, लेकिन हैं दोनों एक ही। कभी कभी तुलसी देवी के प्रणाम करते हुए जो विष्णु भक्ति प्रदेह देवी के जगह पर भक्त लोग सुधार कर कृष्ण भक्ति प्रदेह कह देते। ऐसा नहीं है, विष्णु और कृष्ण एक अर्थ में है। भागवतम में एक दो जगह नहीं, हजारों जगह कृष्ण के लिए विष्णु का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ कह रहे हैं कि एवं सम्मोहयन विष्णु, इस प्रकार विष्णु को विष्णु इसलिए कहते हैं कि जो सर्वव्यापक चर अचर सब में जिनका निवास है उनको मोह में डालने के चक्कर में पड़े। और दो बात, दो शब्द यहाँ कहते हैं, विष्णु और विश्व मोहनम। जो सर्व जगह व्याप्त हैं, कणकण में जिनका आवास है और जो संपूर्ण विश्व को अपने प्रभाव से मोहित किए हुए हैं, जिनके माया से सारा जगत मोहित है, उसको मोह में डालने के फेर में पड़ गए ब्रह्मा जी। स्वयं एव माया अजोपि स्वयं एव विमोहित, स्वयैव स्वयैव माया जोपि स्वयं एव विमोहित। उनको मोह में डालने के चक्कर में ब्रह्मा स्वयं मोहित हो गए। प्रभुपाद जी इस पर बहुत लंबा टीका लिखते हैं। विश्व मोहनम विष्णु विमोहम, विश्व को मोहित करने वाले विष्णु को मोहित करने के फेरे में पड़े। इसलिए अजह अपि भी, ब्रह्मा भी स्वयं एवं माया स्वयं एवं विमोहित, स्वयं अपनी ही माया से ब्रह्मा मोहित हो गए। प्रभुपाद इस पर लंबी टीका लिखे हैं। ब्रह्मा ने उन कृष्ण को मोहित करना चाहा जो संपूर्ण ब्रह्मांड को मोहित करते हैं। सारा ब्रह्मांड कृष्ण की जोग माया के अधीन है और बहिरंगा प्रकृति के अधीन है। मम माया दुरत्तया भगवद गीता में कहते हैं, यह मेरी माया दुष्टर है और इसके प्रभाव में सारा जगत मोहित है। किंतु ब्रह्मा ने उन्हीं को मोहित करना चाहा, इसका परिणाम यह हुआ कि ब्रह्मा स्वयं मोहित हो गए। जिस तरह किसी अन्य को मारने का इच्छुक स्वयं मारा जाए, दूसरे शब्दों में ब्रह्मा अपनी ही चाल से पराजित हो गए, ऐसे ही स्थिति उन वैज्ञानिकों और दार्शनिकों की है जो कृष्ण की योग शक्ति पर विजय पाना चाहते हैं। वे यह कहकर कि कृष्ण को हम ललकारते हैं, ईश्वर क्या है, हम यह कर सकते हैं, हम वह कर सकते हैं, किंतु ये जितना ही अधिक कृष्ण को ललकारते हैं उतना ही अधिक कष्ट पाते हैं। हमें यहाँ यही शिक्षा मिलती है कि हम कृष्ण को पछाड़ने का प्रयत्न न करें, उन्हें पछाड़ने का प्रयास करने के बजाय हम उनकी शरण में जाएं। ब्रह्मा चाहते थे कृष्ण को हराना, किंतु स्वयं हार गए, क्योंकि वे यह नहीं जान पाए कि कृष्ण क्या कर रहे हैं। जब इस ब्रह्मांड के मुख्य पुरुष ब्रह्मा इस तरह मोहित हो सकते हैं, तो तथा कथित वैज्ञानिक और दार्शनिकों के विषय में क्या कहा जाए। कभी कभी लोगों को आश्चर्य होता है कि बहुत पढ़े लिखे लोग भगवान के विषय में नहीं जानते हैं, भगवान का शरण नहीं लेते हैं, और कुछ कहने समझाने पर भी वे उल्टी बातें करते हैं अहंकार बस। अपने पढ़ाई के गुमान में बहुत कुछ बोलते हैं बेढंगा। किंतु हम लोग जानते हैं कि एक अव्वल नंबर का मूर्ख है, कुछ नहीं जानता है। तो भगवान सर्वश्रेष्ठ, सर्वाकर्षक, सर्व सुहृद, परम प्रेमी हैं, इस बात को लोग नहीं जानते। हमें चाहिए कि कृष्ण की व्यवस्था की अवज्ञा करने वाले अपने लघु प्रयासों को त्याग दें। वे जैसा व्यवस्था करें हमें स्वीकार करना चाहिए, यही श्रेयस्कर होता है, क्योंकि इससे हम सुखी हो सकते हैं। हम उनकी व्यवस्था को पराजित करने का जितना भी अधिक प्रयास करेंगे उतना ही अधिक माया में फंसते जाएंगे। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्तया। किंतु जो लोग भगवान के आदेशों को मानकर उनके शरण में आ जाते हैं, मामेव जे प्रपद्यन्ते माया में तम तरन्तिते। कृष्ण की शक्ति उस सरकारी शक्ति के समान है जिसे जीता नहीं जा सकता। सर्वप्रथम सरकार के कुछ नियम होते हैं और उस नियम को लागू करने के लिए सैन्य बल होता है, अतएव सरकारी बल को पराजित करने से क्या लाभ है, उनको ललकारने से क्या लाभ है। अगले श्लोक में स्पष्ट हो जाएगा कि कृष्ण को किसी भी प्रकार से पराजित नहीं किया जा सकता। थोड़ी शक्ति से कृष्ण पराजित नहीं होते हैं। बद्ध जीव की ऐसी ही स्थिति है, ब्रह्मा कृष्ण को मोहित करने चले और स्वयं मोहित हो गए। इस श्लोक में विष्णु शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। विष्णु संपूर्ण भौतिक जगत में हर कण कण में व्याप्त है, किंतु ब्रह्मा उनके अधीन एक पद पर नियुक्त है। जस्यै कनिश्वसित काल मथावलंब्य जीवंति लोम बिलजा जगदंड नाथा। ये बात स्वयं ब्रह्मा जी कहते हैं ब्रह्म संहिता में कि जिनके एक श्वास से ब्रह्मांड निकलता है, अनंत कोटि ब्रह्मांड, और एक लोम बिलजा, एक रोए में अनंत कोटि ब्रह्मांड होता है। जीवंति लोम बिलजा जगदंड नाथा, ये सारे ब्रह्मांड के साथ ब्रह्मांड के नाथा, नाथा बहुवचन में है और खास करके ब्रह्मा के लिए है। ब्रह्मा शिव वरुण कुबेर इंद्रादि इस जितने लोकपाल हैं वो तुच्छ क्षुद्र जीव की तरह हैं। इस तथ्य का प्राकट्य द्वारिका में एक बार हुआ था कि जब कृष्ण ने ब्रह्मा को बुलाया तो एक दिन ब्रह्मा कृष्ण का दर्शन करने द्वारिका में आए। द्वारपाल जाकर कहा कि ब्रह्मा जी आए हैं, तो भगवान कहे पूछ लो कौन ब्रह्मा, किस ब्रह्मांड से आया है। तो द्वारपाल आकर पूछा कृपया आप अपना परिचय बताइए, आप कौन ब्रह्मा हैं, किस ब्रह्मांड से आए हैं। तो ब्रह्मा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि कौन ब्रह्मा, मेरे अलावा और भी ब्रह्मा है क्या, तो हमारे अतिरिक्त और ब्रह्मा भी हैं, जाकर कह दो कि सनक पिता ब्रह्मा आए हैं, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार के पिता ब्रह्मा आए हैं, चतुर्मुख ब्रह्मा। चतुर्मुख तो पहले ही बता दिए थे, उसका चार मुंह है और मिलना चाहता है आपसे। तो भगवान मुस्कुराए और कहे ठीक है बुलाओ। तो भगवान जब आदेश किए, ब्रह्मा जी जब अंदर गए और भगवान को प्रणाम करके थोड़ा गुस्से में ही थे, पूछेंगे आप ऐसा प्रश्न क्यों किए, तो अभी ब्रह्मा को पूछने का अवसर ही नहीं मिला तब तक दूसरा ब्रह्मा भी आ रहे हैं, आठ मुंह वाले, सोलह मुंह वाले, बत्तीस मुंह वाले, चौसठ मुंह वाले, सैकड़ों मुंह वाले, हजारों मुंह वाले ब्रह्मा ऐसे आकर भगवान को दंडवत करने लगे कि बड़े बड़े शेर, बड़े बड़े हाथियों के बीच में जैसे छोटा खरगोश हो, वैसे चतुर्मुख ब्रह्मा की स्थिति हो गई। अरे ये क्या हो रहा है। तो ब्रह्मा को पूछना नहीं पड़ा, स्वयं समझ गए कि असंख्य ब्रह्माओं को आते ही कृष्ण को नमस्कार करते देखकर उनको आश्चर्य हो गया। किसी का दस सिर है, किसी का बीस सिर है, किसी का सौ सिर है, किसी का हजार, किसी का लाख, अद्भुत दृश्य। ब्रह्मा देखकर तो एकदम सकपका गए। प्रभुपाद तो लिखते हैं कि अनेक बलवान बड़े बड़े हाथियों के बीच में एक क्षुद्र मच्छर के तरह ब्रह्मा की स्थिति हो गई, छोटा मच्छर जैसा लगने लगे। खरगोश भी कहा गया है लेकिन मच्छर कह रहे हैं प्रभुपाद। अतः ब्रह्मा कृष्ण को मोहित करके क्या कर सकते हैं। तावदेत्यात्म भू रात्मन माने न त्रुट ने हसा पुरो वदब्दम क्रीडंतम दर्जिशे सकलम हरिम। ब्रह्मा जी बछड़ों और बच्चों को चुरा करके अपने ब्रह्मलोक में चले गए, लेकिन वहां अपने हिसाब से एक त्रुटि में ही लौट आए। त्रुटि बहुत कम समय में ब्रह्मा लौट आए और आ करके देखना चाहे यह सा अपने चेष्टा को कि जो मैंने किया है उसकी क्या स्थिति है, अब बच्चे और बछड़े किस रूप में है, इसको देखने के लिए आए। तो यावंतो गोकुले बाला सब अत्सा सर्व एवही माया सय सयाना में नाद्यापि पुनरुत्थिता। वे सोचने लगे कि गोकुल में जितने भी ग्वाल बाल और बछड़े थे सब मेरी माया से सुला दिए गए हैं, उनको तो मैंने अपनी माया से अचेत कर दिया है, वे अब तक चेत में नहीं हुए। ब्रह्मा के समय के लिए थोड़ा सा एक त्रुटि का समय बिता, एक त्रुटि मतलब बहुत कम समय, जैसे एक नुकीले सुई से कमल पुष्प को छेद दिया जाए, कमल पंखुड़ी को छेद किया जाए, जितने समय में वो छेद हो सकता है उतने कम समय को त्रुटि कहते हैं। तो ब्रह्मा तो अपने समय अपने हिसाब से बहुत कम समय में लौट आए, लेकिन यहाँ एक साल बीत गया। तो सोच रहे थे कि सब अचेत पड़े हुए हैं, एतेत्र कुत्रत्या मन माया मोहि तेतरे तावंत एव तत्राब्दम क्रीडंतो विष्णुना समम। मेरी माया से मोहित हुए ग्वाल बाल और बछड़ों के अतिरिक्त उतने ही बछड़े और बच्चे दिख रहे हैं ब्रह्मा को और कृष्ण भी। नहीं, कहां से आ गए? जो एक साल कृष्ण के साथ खेल रहे थे वे बच्चे, और जो जिन बछड़ों को चुरा रहे थे वो बछड़े, तो मैं छिपा दिया हूं, ये कहां से आ गए? एवं एतेषु भेदेषु चिरम ध्यात्वा स आत्मभू सत्य के कतरे नेति ज्ञातुम नेष्टे कथंचन। ब्रह्मा को बड़ा आश्चर्य होने लगा, दोनों स्थान पर देख रहे हैं, जहां छिपाए हैं वहां और सामने तो देख ही रहे हैं। इतने जैसे बच्चे थे वैसे बच्चे, जैसे बछड़े थे वैसे बछड़े, और सब खेल रहे हैं आपस में। तो ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य होने लगा कि ये ओरिजिनल कौन है? जो मैं छिपाया हूं, जहां छिपाए थे तो देखे कि सब वैसे ही पड़े हैं, और फिर इधर वृंदावन में देख रहे हैं तो वो भी उसी तरह है। तो ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि ये वास्तविक कौन है, इसको देख करके वो मुग्ध हो गए। सत्य के कतरे नेति ज्ञातुम नेष्टे कथंचन, कौन इसमें सच्चे हैं और कौन बनावटी है, कौन ओरिजिनल है कौन डुप्लीकेट है, यह ब्रह्मा जी के लिए आश्चर्य का विषय हो गया। तो इस बात को कहते हुए आगे दो श्लोकों में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि बेचारे ब्रह्मा भगवान को मोहित करने चले और स्वयं मोहित हो गए। उदाहरण देते हैं, तम्यम तमो वनैहारम खद्योतार्ची रिवाहनी महती तरमायैषम निहंत्यात्मनि युञ्जतः। भगवान की माया से बेचारे स्वयं मोहित हो गए। और उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार रात के घोर अंधकार में कुहरा का कोई पता नहीं चलता, और दिन के सूर्य के उज्जवल प्रकाश में जुगनू का प्रकाश का पता नहीं चलता। जुगनू की क्या बात है, दीपक के प्रकाश का भी पता नहीं चलता। जुगनू समझते हैं? जुगनू एक छोटा कीड़ा होता है, बरसात के दिनों में ज्यादा दिखते हैं, और वो जब उड़ते हैं तो उनके पंख में थोड़ा सा लाइट छुक छाक दिखता है, थोड़ा सा प्रकाश छोटा। यहाँ संस्कृत में इसको खद्योत कहते हैं, खद्योत। उसी प्रकार दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, जैसे दिन में सूर्य आकाश में उगे हैं और कहीं पेड़ पर वृक्षों पर खद्योत हैं, जुगनू छुक छाक प्रकाश कर रहे हैं, तो ऐसे प्रकाश का पता ही नहीं चलता। और कहीं दीपक जल रहा है दिन में तो उस दीपक के प्रकाश का भी पता नहीं। दीपक की बात क्या है, बड़े बड़े प्रकाश भी बिजली का भी पता नहीं चलता। किसी फील्ड में कोई बल्ब जला दीजिए दिन में तो उस सूर्य के प्रकाश में वो बल्ब के प्रकाश का पता ही नहीं चलता है। वैसे ही महती तरमायेशम निहंत्यात्मनि उञ्जतः। जब क्षुद्र पुरुष महापुरुषों पर अपनी माया का प्रयोग करता है तो उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाता, बल्कि अपना ही प्रभाव खो देता है। तावत सर्वे वत्सपाला पश्यतो जस्य तत्क्षणात् व्यदृशंता घनश्यामा पीत कौशे अवाससः। तो ब्रह्मा जी तो चकित चकित दृष्टि से देख रहे थे कि जो मैं छिपाया हूँ वो ओरिजिनल है, कि जो वृंदावन में दिख रहे हैं वो। इसी फेरे में बेचारे इधर उधर देख रहे थे, तब तक कृष्ण के साथ जो बछड़े थे गोप सखा थे वे सब चतुर्भुज विष्णु रूप में दिखने लगे। तावत सर्वे वत्स पाला पश्यतो जस्य तत्क्षणात् व्यदृशंत घनश्यामा पीत कौशेय वाससः। सबके सब सुंदर जलधर के समान घनश्याम रूप में दिख रहे थे, पीताम्बर धारण किए हुए थे, शंख चक्र गदा और पद्म से युक्त चतुर्भुज, और सबके सिर पर मुकुट, कानों में कुंडल, कंठों में मनोहर हार और वनमालाएं शोभा पा रही थी। बहुत सुंदर दिखने लगे सभी। उनकी आकृतियां नीले रंग की थी और पीले वस्त्र पहने थे। ब्रह्मा अपने शक्ति तथा कृष्ण की अत्यधिक असीम शक्ति के विषय में सोच विचार कर रहे थे, किंतु अभी तक कोई निर्णय नहीं कर पा रहे थे। तब तक अविलंब यह रूपांतर हो गया। उन पार्षदों का भगवत स्वरूप का यह अचानक परिवर्तन हो गया। वो तो स्वयं भगवान ही थे उस रूप में, तो फिर अपने असली रूप में हो गए। चतुर्भुजा शंख चक्र गदा राजीव पाणय किरीटिन कुंडलिन हारिण वनमालिन श्रीवत्सांग ददो रत्न कंबु कंकण पाणय नुपुर कटक भाता कटी सूत्रांगुली नुपुरई कटकई भाता कटी सूत्रांगुली यकई। तो इस प्रकार सभी अद्भुत श्रृंगार युक्त दिख रहे थे, सभी सजे धजे थे, सभी विष्णु स्वरूप थे, सबके शरीर चतुर्भुज हैं और उनके वक्षस्थल पर सुवर्ण की रेखा दिख रही है, श्रीवत्स चिन्ह, बाहुओं में बाजूबंद, रत्नों से जड़े हुए कंगन, चरणों में नुपुर, कमर में करधनी, उंगलियों में अंगूठियां जगमगा रही हैं। बहुत सुंदर लग रहे हैं वे। नख से सिख तक समस्त अंगों में कोमल और नूतन तुलसी की मालाएं पहने हुए थे। आंग्री मस्तक कपा पूर्णा तुलसी नवदाम भी कोमलई सर्व गात्रेषु भूरी पुण्यवदर्पितई। बहुत सुंदर तुलसी की माला धारण किए हुए थे, उन्हें भाग्यशाली भक्त लोग पहनाए थे। ऐसे लग रहा था कि तुरंत की तुलसी दल तुलसी पत्र तोड़ करके माला बनाया गया है और सबको पहनाया गया है। बहुत सुंदर लग रहे थे। तो इनके परिवर्तित स्वरूप को देखकर ब्रह्मा चकित हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि सभी विष्णु रूप में प्रकट हैं, सब में शंख चक्र गदा पद्म दिख रहा है, किंतु ब्रह्मा के समक्ष विष्णु के जो रूप प्रकट हुए थे उनमें श्री वत्स का चिन्ह और कौस्तुभ मणि भी थे, जो केवल भगवान के ही विशेष लक्षण हैं। इसे सिद्ध होता है कि सारे बालक बछड़े यथार्थ रूप में भगवान ही थे, केवल उनके वैकुंठ संगी नहीं थे, स्वयं कृष्ण थे। विष्णु के सारे ऐश्वर्य कृष्ण में पहले विद्यमान रहता है। यद्यपि एक विशेष बात प्रभुपाद कह रहे हैं कि वैकुंठ के पार्षद भी शंख चक्र गदा से युक्त रहते हैं, चतुर्भुज रहते हैं। वैकुंठ में सारूप्य मुक्ति मिलती है, लेकिन दो चीज उन पार्षदों में नहीं होता है, श्री वत्स चिन्ह और कौस्तुभ मणि, और सब विष्णु जैसा होता है। हु बहु रंग, हु बहु भुजाएं और मुकुट, रूप एकदम विष्णु जैसा होता है, लेकिन भृगु का द्वारा मारे हुए चरण चिन्ह नहीं होता है, जो वक्षस्थल पर भगवान के होता है। सब पर नहीं, पार्षदों में नहीं होता, और कौस्तुभ माला नहीं। लेकिन यहाँ सभी बच्चे श्री वत्स चिन्ह और कौस्तुभ माला से युक्त दिख रहे हैं, तो असाधारण ज्ञान वाले ब्रह्मा हैं। मान लीजिए कि चतुर्भुज दिखते और कौस्तुभ मणि और श्री वत्स चिन्ह नहीं दिखता, तो ब्रह्मा जी समझते कि ये भगवत पार्षद हैं, वैकुंठ में जो रहते हैं वही यहाँ इस रूप में है। लेकिन कौस्तुभ मणि और श्री वत्स चिन्ह दिखाकर एकदम स्पष्ट कर दिया गया भगवान के द्वारा कि हम सभी रूपों में हो सकते हैं, ये बच्चों के रूप में, बछड़ों के रूप में हम ही हैं। भगवान यह बता दिए ब्रह्मा जी को, केवल भगवान के ही लक्षण हैं। इससे सिद्ध होता है कि सारे बालक और बछड़े यथार्थ में कृष्ण ही हैं, केवल उनके वैकुंठ संगी नहीं हैं। विष्णु के सारे ऐश्वर्य कृष्ण में पहले से ही विद्यमान है। फलतः इतने विष्णु रूपों का प्रदर्शन कृष्ण के लिए कोई आश्चर्यजनक चीज नहीं है। कोई कह सकता है कि कृष्ण एक है तो इतने अनेक रूप में विष्णु कैसे दिख रहे हैं। आचार्य लोग कहते हैं कि कृष्ण से ही विष्णु निकलते हैं ना, विष्णु तो कृष्ण के रूपांतर है, भगवान कृष्ण से ही ये विष्णु रूप प्रकट होते हैं। श्री बलराम, चतुर्विहु, महाशंकरषण, कर्णोदक साई, गर्भोदक साई, शिरोदक साई, जितने विष्णु रूप हैं गोलोक में या वैकुंठ जगत में, सब कृष्ण के रूपांतरित रूप हैं। तो एक कृष्ण में अनेकों विष्णु दिख सकते हैं, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। वैष्णव तोषणी में श्री वत्स चिन्ह को भगवान विष्णु के वक्षस्थल की दाहिनी ओर के ऊपरी भाग में सुंदर पीले बालों की छल्ला कुंजन को बताया गया है। भगवान के दाहिने ओर यहाँ पर एक तरफ लक्ष्मी जी रहती हैं और एक तरफ भृगु जी का चरण, तो भृगु जी के चरण को प्रदर्शित करने वाला चिन्ह है। भगवान के वक्षस्थल पर स्वर्णिम रोमावली है, सोना जैसे चमकता हुआ रोए, उस रोआ को, उस बाल को श्री वत्स चिन्ह कहते हैं और एक तरफ लक्ष्मी जी होती हैं। तो इस प्रकार यह चिन्ह साधारण भक्तों के लिए नहीं है, यह भगवान के लिए ही, कृष्ण के लिए, विष्णु के लिए ही विशेष रूप में चिन्ह है। तो इस रूप को देखकर ब्रह्मा जी समझ गए, ब्रह्मा जी को समझने में अब देर नहीं लगा, वो समझ गए कि साक्षात भगवान ही इतने रूपों में हैं। और सभी तुलसी के माला पहने हुए हैं, जिनको बहुत पुण्य करने वाले भक्तों को यह अवसर मिलता है भगवान की सेवा करने का। एक विशेष बात कहे ना इस श्लोक में, आंग्री मस्तक माँ पूर्णा तुलसी नव दाम भी कोमलई सर्व गात्रेषु भूरी पुण्य वदर्पितई। भूरी पुण्य वदर्पितई शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान के शरीर में माला पहनाया जाता है तुलसी का, एकदम यहाँ से मस्तक से लेकर चरण तक लटकती हुई लंबी तुलसी की माला, सारे अंगों में तुलसी। तो ये पूरी तरह तुलसी से श्रृंगार करते हैं भक्त लोग। कोमलई सर्व गात्रेषु, उनके सारे कोमल अंगों में नूतन तुलसी की मालाएं रहती हैं। और ये माला कौन पहनाते हैं? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं भूरी पुण्य वदर्पितई। भूरी पुण्य वदर्पितई मतलब बहुत ज्यादा पुण्यवान व्यक्ति को यह अवसर मिलता है तुलसी का माला बनाने का, भगवान को पहनाने का। इस श्लोक में यह शब्द भूरी पुण्यवद अर्पितई बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। विष्णु के इन रूपों में पूजा उन भक्तों के द्वारा की जाती है जो अनेक जन्मों तक पुण्य कर्म किए हैं, सुकृति भी, जो भक्ति में निरंतर लगे हुए हैं, जो श्री भगवान के विशेष कृपा प्राप्त किए हैं, उनको तुलसी माला बनाने का अवसर मिलता है और अर्पित करने का अवसर मिलता है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, भक्ति उन लोगों द्वारा की जाती है जो अत्यंत उच्च कोटि के पुण्य किए हैं। श्रीमद् भागवतम में अन्यत्र भी वर्णन है, इसके पहले भी आप सुने हैं कि जब भगवान गोप सखाओं के साथ खेल रहे हैं तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, इथम सताम ब्रह्म सुखानुभूत्या दास्यम गतानाम पर दैवतेन माया सितानाम नरदार केण साकम बिजरहु कृत पुण्य पुंजा। 12वें अध्याय में यह श्लोक आया है। जो लोग भगवान के भक्ति करने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं, उनके आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर लिए हैं, भगवान को ही अपना स्वामी मानकर उनकी सेवा करते रहते हैं, वे वास्तव में सामान्य व्यक्ति नहीं हैं, वे बहुत ज्यादा पुण्य संचित किए हैं, पूर्व जीवन में बहुत ज्यादा पुण्य का काम किए हैं। ऐसे महापुरुष ही भगवान के साथ मित्र बनकर खेल सकते हैं। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, वृंदावन के हमारे कृष्ण बलराम मंदिर में एक तमाल वृक्ष है जो आंगन के पूरे एक कोने में छाया हुआ है। जब तक मंदिर नहीं बना था यह वृक्ष उपेक्षित था, किंतु अब इसकी इतनी बाढ़ हो गई है कि इसे आंगन के पूरे कोने को घेर लिया है, एक कोने को। यह भूरी पुण्य कहलाता है। वास्तव में वह बहुत ज्यादा पुण्य करके वृक्ष बना है। ऐसा सौभाग्य किसी पुण्यात्मा को ही प्राप्त होता है। चंद्रिका विशदस मेरे सारूणापांग वीक्षित ही स्वकार्था नाम युवा रज सत्वाभ्याम षष्ठ पालक। तो इस प्रकार वे सभी गोप सखा और बछड़े विष्णु रूप में दिख रहे हैं और उनके शरीर से तेज निकल रहा है, प्रकाश बहुत सुंदर प्रकाश निकल रहा है और बहुत स्मित मधुर मुस्कान रहे हैं। उनके मुस्कान चांदनी के समान उज्जवल है और सुंदर सुंदर नेत्र हैं, लाल लाल नेत्र और कटाक्ष पूर्ण चितवन है और बड़ी मधुर चितवन है। ऐसा जान पड़ता है कि रजोगुण और सत्वगुण को स्वीकार करके भक्त जनों के हृदय में शुद्ध लालसा उत्पन्न कर रहे हैं। स्वकार्था नाम युवा रज सत्वाभ्यम सृष्टि पालका, भगवान भक्तों के थोड़े से गुण को स्वीकार करके उनको अपना लेते हैं। ऐसा लग रहा है भगवान ब्रह्मा जी के थोड़े से दोष पर क्षमा कर रहे हैं, उनको स्वीकार कर रहे हैं। ये विष्णु स्वरूप पूर्ण चंद्रमा के बढ़ते हुए प्रकाश के समान अपने निर्मल कटाक्षों और मुस्कानों से भक्तों को आशीर्वाद दे रहे हैं। श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम, पालन कर्ताओं के रूप में वे अपने भक्तों पर कटाक्ष कर रहे हैं, उनका आलिंगन कर रहे हैं, अपनी मुस्कान से उनकी रक्षा कर रहे हैं। उनकी हंसी सतोगुण के तुल्य भक्तों के समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाली थी और कटाक्ष रजोगुण के समान थे। वस्तुतः इस श्लोक में आया हुआ रज शब्द काम का नहीं है, स्नेह का द्योतक है और भौतिक जगत में रजोगुण काम का सूचक है, किंतु आध्यात्मिक जगत में रजोगुण का अर्थ स्नेह है। तो भौतिक जगत में रजोगुण और तमोगुण से स्नेह कलुषित होता है, किंतु शुद्ध सत्व में भक्तों का पोषण होता है। तो श्रील प्रभुपाद इस पर कुछ विशेष टीका लिखते हैं, कहते हैं वृंदावन में एक स्थान है जहाँ पर कोई मंदिर नहीं था, किंतु एक भक्त ने चाहा कि यहाँ एक मंदिर हो जाए और सेवा हो, तो वह वीरान स्थान भी तीर्थ स्थान बन गया। यह है भगवान के द्वारा भक्तों की इच्छा की पूर्ति। तीसरे स्कंद के 28वें अध्याय में अष्टांग योग का वर्णन है भगवान कपिल देव के द्वारा। तो भगवान के विविध रूपों का स्मरण की कला भगवान कपिल सिखाते हैं, कैसे ध्यान करना चाहिए। तो उनके चरणों का ध्यान, उनके घुटनों का ध्यान, उनके नाभि का ध्यान, वक्षस्थल का ध्यान, फिर उनके गला का ध्यान, मुखमंडल का ध्यान, उसी क्रम में भगवान के स्मित मधुर मुस्कान का ध्यान करने को कहते हैं। तो कहते हैं कि भगवान जब मुस्कुरा करके किसी भक्तों की ओर देखते हैं तो उनका स्मित मुस्कान संसार के शोक सागर को सुखा देता है। कोई व्यक्ति कितना ही दुखी हो, संतप्त हो, भौतिक आपदाओं से ग्रस्त हो, लेकिन भगवान के श्री विग्रह के सामने जब जाकर खड़ा होता है और भगवान विशेष कृपा पूर्वक जब मंद मंद मुस्कुराते हुए अपने भक्त के तरफ देखते हैं तो उसका शोक का समुद्र सूख जाता है। और प्रकट लीला काल में जब भगवान अपने भक्तों से कभी मुस्कुराते हुए बात करते थे तो अब पूछिए मत, एकदम लट्टू हो जाते थे भक्त लोग। संसारिक दुख की चर्चा करने का कोई अवसर ही नहीं मिलता, केवल सुख ही सुख। भगवान मिलते ही भक्तों से कहते हैं, कहो कैसे हो, ठीक हो ना? तो ठीक नहीं है तो कहने का कोई मतलब ही नहीं है, बिल्कुल ठीक है, एकदम आनंद है। एक बार भगवान श्री राम हनुमान जी से पूछे, कहो हनुमान कुशल है ना, ठीक है ना? तो हनुमान जी कहते हैं, प्रभु कुशल की बात कर रहे हैं। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तव सुमिरन भजन न होई। अरे विपत्ति और संकट और आपदा तो तभी है जब तक आपका व्यक्ति भजन नहीं करता, आपका दर्शन नहीं करता, आपके नामों का उच्चारण नहीं करता, आपकी कथा नहीं सुनता, आपके निकट नहीं आता, तब तक वो विपत्ति में है। और मैं आपके सामने हूं, अब विपत्ति की क्या बात है। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तव सुमिरन भजन न होई। जब तक आपका भजन नहीं होता है तभी तक विपत्तियां हैं। भजन में सब कुछ है, दर्शन, प्रणाम, उनके नाम का उच्चारण, कथा श्रवण, सेवा, सब कुछ भजन के अंदर है। तव माने आपका, जब तव सुमिरन भजन न होई, जब तक व्यक्ति आपका स्मरण नहीं करता, जप नहीं करता आपके नामों का, तब तक वो विपत्ति में है। विपदो नैव विपदः, संपदो नैव संपदः, विपदः विस्मरणम विष्णु, संपदो नारायण स्मृति। एक भक्त का उद्गार है कि संसार में आने वाली विपत्तियां विपत्तियां नहीं है, संसार में दिखने वाली संपत्तियां संपत्तियां नहीं है, ये संपत्ति नहीं है। विपदो नैव विपदः, संपदो नैव संपदः, यहाँ जो विपत्तियां दिख रही है वास्तव में वो विपत्ति नहीं है, और जो संपत्ति दिख रही है रुपया पैसा बैंक बैलेंस, ये संपत्ति नहीं है। तब किसको संपत्ति और किसको विपत्ति कहते हैं? तो विपदः विस्मरणम विष्णु, संपदो नारायण स्मृति। वास्तव में सबसे बड़ी विपत्ति है कि व्यक्ति भगवान को भूल जाए, और सबसे बड़ी संपत्ति है कि भगवान को स्मरण करे। संपदो नारायण स्मृति, सबसे बड़ी संपत्ति है भगवान का स्मरण करना। तो इस प्रकार श्री भगवान का दर्शन होता है, इससे बढ़कर कोई सुख नहीं है। भगवान का नाम जपते हैं, उच्चारण करते हैं, कथा सुनते हैं, इससे बढ़कर कोई सुख नहीं है। कुंती महारानी कहती है कि हमको विपत्ति दे दीजिए, शाश्वत विपत्ति, परमानेंट विपत्ति कर दीजिए हमारी विपत्ति को। टेम्पररी विपत्तियां तो आई और चली गई। हे कृष्ण, आप हम पर विशेष कृपा कीजिए, हमको विपत्ति दे दीजिए। तो सुनने वाले को लगेगा कि अरे क्या मांग ली कुंती। लेकिन कुंती महारानी बड़ी बुद्धिमानी से विपत्ति मांगती है। विपदः संत न शश्वत, तत्र तत्र जगत गुरु। हे जगत के परम हितैषी, हे कृष्ण, मुझे विपत्ति दीजिए, शश्वत विपत्ति दीजिए। और उस विपत्ति में क्या करोगी, क्या होगा विपत्ति? विपदः संत न शश्वत, तत्र तत्र जगत गुरु, भवतो यद दर्शनम यद सात अपुनर्भव दर्शनात्। हाँ, कहती है उस विपत्ति से एक बहुत बड़ा प्रॉफिट है कि आप उपस्थित रहते हो। रोज रोज इस तरह महाभारत का युद्ध होता रहे और आप सारथी बनकर उपस्थित रहो, रोज द्रौपदी का चीरहरण हो और साड़ी बनकर आप उपस्थित रहो। यह टेम्पोररी विपत्ति आई और चली गई और आप द्वारिका जाने के लिए रथ पर चढ़ गए। अगर हमारे पास विपत्तियां रहती तो आप उपस्थित रहते। अब सारी विपत्ति चली गई, सारे शत्रु मारे गए, युधिष्ठिर राजा मन गया, तो अब आप जा रहे हैं। तो इस संपत्ति में आग लग जाए जहां आपका दर्शन ना हो, कोई जरूरत नहीं है इस संपत्ति की। यत्स्यात् पुनर्भव दर्शनात्, जिनके दर्शन से संसार का दर्शन समाप्त हो जाता है, भव दर्शन नहीं होता। जिनके उपस्थिति से संसार का दुख समाप्त हो जाता है, तो हे श्री कृष्ण, आप हमारी विपत्ति को परमानेंट कर दो, शाश्वत कर दो। टेम्पोररी विपत्तियां आई और चली गई। तो भगवान के उपस्थिति से विपत्ति नहीं रहती। भगवान कपिल देव कहे हैं कि भगवान के मंद मुस्कान युक्त दर्शन से विपत्तियां समाप्त हो जाती हैं। एकदम शोक का सागर सूख जाता है और उस पर भगवान बोल दे, पूछ दे तो क्या कहना है, आप कैसे हो, ठीक हो ना, इतना तो बहुत बड़ा चीज है। हनुमान जी इसीलिए कह दिए कि आज आप कुशल पूछ रहे हैं, अब इससे बढ़कर क्या कुशलता होगा कि आप मुझसे बात कर रहे हैं। तो बहुत सुंदर भगवान के रूप का वर्णन कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। ब्रह्मा जी देख रहे हैं, आत्मादिश स्तंभ पर्यंत ही मूर्ति मद भी चरा चरई, नृत्य गीत्या दने काय पृथक पृथक उपासिता है। ब्रह्मा जी यह भी देखे कि उन्हीं के जैसे दूसरे देवता उस भगवत स्वरूप की आराधना कर रहे हैं। ब्रह्मा जी एक जगह किनारे से देख रहे हैं और सारे जगत के लोग भगवान के उस रूप की उपासना कर रहे हैं, अनेकों जीव समुदाय छोटे छोटे तृण से लेकर ब्रह्मा पर्यंत मूर्तिमान होकर नाच रहे हैं, गा रहे हैं, पूजा सामग्री लेकर अर्पित कर रहे हैं, कोई माला चढ़ा रहा है, कोई फल दे रहा है, कोई प्रणाम कर रहा है। ब्रह्मा जी एकदम चकित हैं। और यही नहीं, उन श्री प्रभु को चारों तरफ से अणिमा लघिमा आदि सिद्धियां नौ निधियां घेर कर खड़ी हैं। अणिमादई महिमा भी जाद्या भी विभूति भी चतुर्विंशति भी तत्व ही परिता महदादि भी, चारों तरफ से सिद्धियां घेरी हुई हैं। उन्हें अलग अलग अणिमा महिमा आदि सिद्धियां माया विद्या आदि विभूतियां सब जगह महत तत्व 24 तत्व सब घेरे हुए हैं। ब्रह्मा जी देख रहे हैं, बहुत बड़े विद्वान बहुत बड़े वैज्ञानिक कवि ब्रह्मा देख रहे हैं भगवान के ऐश्वर्य को, एकदम चकित हैं। काल स्वभाव संस्कार काम कर्म गुणादि भी स्वमहिध्व तमही भी मूर्ति मदभीर उपासिता। ब्रह्मा जी देख रहे हैं कि प्रकृति में क्षोभ उत्पन्न करने वाला काल परिणाम का कारण स्वभाव वासनाओं को उत्तेजित करने वाला जगाने वाला संस्कार कामनाएं कर्म विषय और फल सभी मूर्तिमान होकर भगवान की उपासना कर रहे हैं। भगवान की सत्ता और महत्ता के सामने उन सभी की सत्ता और महत्ता का अस्तित्व न के बराबर है। एकदम सभी बड़े बड़े महत्वपूर्ण तत्व हैं, लेकिन भगवान के सामने सब फीके दिख रहे हैं। तो इस प्रकार इन सब श्लोकों पर प्रभुपाद का टीका है, सब पर तात्पर्य है। एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत जारे जैसे नचाए से तैसे करे नृत्य। सभी भगवान के सेवक के रूप में सेवा कर रहे हैं। केवल विष्णु को स्वतंत्रता प्राप्त है और सभी परतंत्र है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, यदि हम में यह चेतना जागृत हो सके तो हम यथार्थ में कृष्ण भावना भावित हैं। अगर मन में यह भाव आए कि हम भी कुछ हैं, यह निरामूर्खता है। हमें सदैव स्मरण रहना चाहिए कि कृष्ण ही एकमात्र परम स्वामी हैं और हर एक व्यक्ति उनका दास है। एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत, चाहे कोई नारायण हो, शिव हो, ब्रह्मा हो, सभी उनके सेवक हैं। प्रत्येक जीव कृष्ण के अधीन है। शिव विरंचि नुतम शरण्यम, यहाँ तक कि बलदेव भी कृष्ण के अधीन है। एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य जारे जैसे नचाए से तैसे करे नृत्य। मनुष्य को यह समझना चाहिए कि कोई भी स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति कृष्ण का अंश है और कृष्ण के इच्छा के अनुसार काम करता है। यस्तु नारायणम देवम ब्रह्म रुद्रादि दैवतई समत्व नैव वीक्षेत सब पाखंडी भवे ध्रुवम। जो व्यक्ति ब्रह्मा और शिव जैसे देवताओं को नारायण के समकक्ष मानता है, वह निश्चित रूप से अपराधी माना जाता है। इस सिद्धांत को बहुत बढ़िया से समझना चाहिए। दूसरा नाम अपराध है कि शिव ब्रह्मा आदि देवताओं की शक्ति सामर्थ्य या नाम भगवान से तुलना करना अथवा उनसे भिन्न समझना। कहने के लिए तो हम लोग बोल देते हैं, लेकिन समझने में थोड़ा गलती भी कर बैठते हैं। भगवान के समान नहीं है और भगवान से भिन्न भी नहीं है। जिसके पास 1 करोड़ रुपया है, उसके पास 10 लाख 20 लाख है या 1000 2000 भी है। सारे अवतारों के उत्स हैं, सर्व कारण कारण हैं। ऐसे श्री भगवान में ब्रह्म रुद्र आदि देवता अपने आप हैं। ऐसा नहीं कि उनका भिन्न अस्तित्व है, उनके समान भी नहीं है, उनसे अलग भी नहीं है। दो चीज इसमें विशेष ध्यान देना है। कहने का मतलब कि उनसे भिन्न नहीं है, अलग उनका अस्तित्व नहीं है, का अर्थ यह है कि वो भी आदरणीय है, पूज्य है, देव है। देव का अर्थ ही है पूज्य। जो भी देव है, वो महादेव हो या इंद्र देव हो या वरुण देव हो या सूर्य देव हो, गुरुदेव, जहां भी देव शब्द लगा है, देव का अर्थ होता है पूज्य, पितृदेवो भव, मातृदेवो भव, देव का अर्थ पूजनीय, जिनका आदर होना चाहिए। तो ऐसे अनेक देव होते हैं, पूज्य होते हैं, और वो श्री भगवान के अंश हैं, उनसे अलग नहीं है। तो इसमें दो विशेष बात जानना है। एक कि भगवान की आराधना से सबकी आराधना हो जाती है। वृक्ष के जड़ में जल डालने से सभी पेड़ के तना, पत्ते, टहनियां, फल सबको मिल जाता है। या पेट में भोजन डालने से शरीर के सभी अंगों को भोजन मिल जाता है, हाथ को, पैर को, आंख को, कान को, सबको। अगर मान लीजिए आंख से कम दिखाई दे रहा है, कुछ धुंधलापन आ गया, तो अपनी बुद्धि लगाए कि दूध में बहुत शक्ति है, पौष्टिक शक्ति, तो गर्म दूध करके आंख में ही डायरेक्ट डाल दें, तो इससे रोशनी बढ़ने के बजाय आंख जो है वो भी चौपट हो जाएगा। ऐसी मूर्खता नहीं करना है, मुंह में डालना है, पेट में, और वहां से रस सप्लाई करके वो आंख को भी देगा। तो कभी कभी इस प्रकार की गलतियां हो जाती हैं कि जो अलग अलग विभागाध्यक्ष देवता हैं उनको ही सब कुछ मानकर भगवान को छोड़कर उनकी उपासना करने लगते हैं, तो यह गलती है। अथवा वैष्णवों के द्वारा इस तरह की गलती नहीं होती है, वैष्णवों के द्वारा दूसरी तरह की गलती होती है कि जब भगवान की आराधना करने लगे तो ये देवता देवी कीट पतंग जैसे उपेक्षित हो जाते हैं। इनकी क्या जरूरत है, हम तो भगवान के भक्त हैं, हमारे लिए देवताओं का कोई मतलब ही नहीं है। ये दो तरह के, दूसरे नामापराध में दो तरह की गलती की संभावना होती है। तो वैष्णवों से इस तरह की गलती होती है कि देवताओं की उपेक्षा कर देते हैं, माने छोटे स्तर के वैष्णव, वैष्णव सब सबके लिए नहीं है। जो उच्चतम स्तर के हैं वो तो स्थिति समझते हैं, जो प्राइमरी क्लास के हैं, कनिष्ठ वैष्णव, वे नए उत्साह में, नए वैराग्य में देवताओं की उपेक्षा कर देते हैं, तो ये अपराध हो जाता है। हमारे गुरु महाराज इसको बड़ा सुंदर उदाहरण से समझाते हैं कि जैसे एक युवती को विवाह के समय सलाह दिया जाता है, उसके माता पिता सिखाते हैं, माँ सिखाती है कि ससुराल में जाने के बाद पति के परिवार के सभी मेंबर का आदर करना है, सास का, ससुर का, देवर का, भसुर का, जो भी परिवार के मेंबर हैं सभी आदरणीय हैं, सबका सम्मान करना है। ऐसा नहीं कि बस पति को प्राप्त करके सबको उपेक्षा कर दिए, कुछ किसी का मतलब नहीं। आदर सबका करना है, सम्मान सबका करना है, सबके लिए भोजन बनाना है, सबको मधुर वचन बोलना है, सबसे उचित यथोचित व्यवहार करना है, लेकिन पति से स्पेशल, और पति से जो व्यवहार है वो पति के बाप से नहीं संभव है, पति के बड़े भाई से नहीं संभव है। पूजनीय सभी हैं लेकिन आराध्य केवल पति है। उसी प्रकार सभी देवता सम्माननीय हैं लेकिन आराध्य श्री कृष्ण हैं, भगवान, भगवान ही आराध्य हैं, और उन्हीं की आराधना होनी चाहिए, लेकिन अपमान किसी का नहीं होना चाहिए। तो इस तरह इस बात को समझना चाहिए। यस्तु नारायणम देवम ब्रह्म रुद्रादि दैवतई समत्वे नैव वीक्षेत स पाखंडी भवेत ध्रुवम। जो व्यक्ति ब्रह्मा और शिव जैसे देवताओं को भगवान नारायण समझने का गलती करता है, समकक्ष मानता है, वह निश्चित रूप से अपराधी है, पाखंडी है। नारायण और कृष्ण की समता कोई नहीं कर सकता। कृष्ण ही नारायण है और नारायण ही कृष्ण है, क्योंकि कृष्ण आदि नारायण है। कृष्ण को स्वयं ब्रह्मा नारायणस्त्वम नहीं सर्वदेहिनाम कहकर संबोधित करते हैं, जिसका अर्थ है कि तुम नारायण भी हो और तुम ही आदि नारायण हो। तो इस प्रकार काल के अनेक सहायक हैं, स्वभाव, संस्कार, काम, कर्म, गुण, बहुत लंबा तात्पर्य प्रभुपाद लिखते हैं। तो इस प्रकार भागवतम में अनेक जगहों पर ऐसा वर्णन है कि श्री भगवान आराध्य हैं और उनकी आराधना होनी चाहिए। सब पर प्रभुपाद लिख रहे हैं, काल का क्या अर्थ है, संस्कार का क्या अर्थ है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। जहां तक संस्कार का संबंध है वह है अच्छी संगति, अच्छी संगति से संस्कार बनता है, क्योंकि अच्छी संगति से अच्छी आदतें बनती हैं, और आदत ही उस स्वभाव के रूप में बदल जाता है। इसलिए भक्त सन्निवास कहा गया है। लोगों को भक्तों के साथ रहने का अवसर मिलना चाहिए, तभी उनकी आदतें बदलेंगी। मनुष्य जीवन में यह अवसर मिलता है, किंतु दुर्भाग्यवश हम उस अवसर को खो देते हैं, नहीं उस अवसर का लाभ उठाते। हरि हरि विफले जन्म गुआइनो। यदि लोग इस अवसर का लाभ उठाने में विफल रहते हैं तो उनका मनुष्य जीवन व्यर्थ हो जाता है। इसलिए मानव समाज को नीचे जाने से बचाने का और लोगों को वास्तव में ऊपर उठाने का हम प्रयास कर रहे हैं। जहां तक काम और कर्म की बात है, यदि मनुष्य अपने को भक्ति में लगाता है तो उसका स्वभाव इंद्रिय भोग में अपने को लगाने से बने स्वभाव की अपेक्षा भिन्न हो जाता है। इसका परिणाम भी निस्संदेह भिन्न होता है। मनुष्य को विभिन्न स्वभावों की संगति के अनुसार ही विशेष प्रकार का शरीर प्राप्त होता है। कारणम गुण संगोष्य संगोष्य सदसद जोनि जन्मसु। इसलिए हमें अच्छी संगति, भक्तों की संगति करनी चाहिए, तभी हमारा मनुष्य जीवन सार्थक होगा। और मनुष्य का पहचान उसकी संगति से होती है, कंपनी से। यदि मनुष्य को भक्तों की सत्संगति में रहने का अवसर मिलता है तो वह ज्ञान अनुशीलन करने में समर्थ हो जाता है, और उसका चरित्र अथवा स्वभाव भी उसी के अनुसार उसके अस्थाई लाभ में बदल जाता है। तो इस प्रकार हर श्लोक अत्यंत महत्वपूर्ण है, और श्रील प्रभुपाद उस पर अपनी टीका तात्पर्य लिख रहे हैं, तो इसको आप पढ़िएगा। सत्य ज्ञानानंतानंद मात्रै कर रसमूर्तयः अस्पृष्ट भूरिमाहात्म्या अपि ह्युपनिषद् दिशाम। ब्रह्मा जी ने यह भी देखा कि सभी भूत भविष्य वर्तमान काल द्वारा सीमित नहीं है, त्रिकाल बाधित सत्य है। वे सबके सब स्वयं प्रकाश हैं, अनंत आनंद स्वरूप हैं, उनमें जड़ता और चेतना का भेदभाव नहीं है, सबके सब एक रस हैं। यहाँ तक कि उपनिषद दर्शी तत्व ज्ञानियों की दृष्टि भी उनके अनंत महिमा का स्पर्श नहीं कर पा सकती। ब्रह्मा जी तो चकित हैं, उन रूपों का दर्शन करके देख रहे हैं कि ये जो विष्णु मूर्तियां हैं अनेक रूपों में, वो शाश्वत है, असीम स्वरूप वाली है, ज्ञान और आनंद से परिपूर्ण है, काल के प्रभाव में नहीं है। उपनिषद के अध्ययन करने वाले ज्ञानियों के पकड़ से भी बाहर है। अद्भुत रूप दर्शन कर रहे हैं ब्रह्मा जी। केवल शास्त्र ज्ञान से भगवान को समझने में सहायता नहीं मिल सकती। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, जिस पर भगवान की महती कृपा होती है वही इसको समझ सकता है। नायमात्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुते न यमे वैश विणुते ते न लभ्य तस्यैष आत्मा विणुते तनुम स्वाम। वास्तव में भगवान की प्राप्ति बहुत दक्ष व्याख्याओं द्वारा नहीं होती। बहुत बुद्धिमान है, बोलने में समर्थ है, ऐसे व्यक्ति अपने वाक्पटुता से वाक्चातुरी से लोगों को रिझा लेता है, लेकिन ऐसे प्रवचन से भगवान संतुष्ट नहीं होते। वास्तव में भगवान के विषय में ठीक ठीक जानना भक्ति के द्वारा संभव है, ज्ञान और शास्त्र अध्ययन से संभव नहीं है। बहुत से ज्ञानी डिग्री डिप्लोमा लिए हैं, बहुत भाषा जानते हैं, बहुत शास्त्रों की उक्तियां भी रट लिए हैं, लेकिन भगवान के प्रति उनकी आत्मीयता नहीं है, सौहार्द नहीं है, अपनत्व तो नहीं है। इस कारण से बेचारे धोखा खा जाते हैं। तो इस प्रकार केवल भगवान भक्ति से ही ग्राह्य हैं। श्रीमद् भागवतम में अनेकों जगह भगवान कहते हैं, भक्त्या अहमेकया ग्राह्य, एकमात्र भक्ति के द्वारा ही मुझको समझा जा सकता है। ब्रह्म के दिव्य स्वरूप की स्थापना किस प्रकार होती है, इसको समझाने के लिए श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अनेक उदाहरण देते हैं। ब्रह्म को आदित्य वर्णम तमसः परस्तात, जिनका स्वरूप सूर्य के समान ज्योतिमान तथा ज्ञान के अंधकार से परे है, आनंद मात्रम अजरम पुराणमेकम संतम बहुधा दृश्यमानम। शास्त्रों में सब उक्तियां हैं। ब्रह्म आनंद पूर्ण है, उनमें दुख का लेश नहीं है, वे सबसे पुराने होकर भी कभी बूढ़े नहीं होते, नवजौवन बने रहते हैं, वे एक होते भी अनेक रूपों में दिखते हैं, वे सर्वे नित्या शाश्वताश्च देहास्तस्य परात्मना। उस परम पुरुष के सभी रूप शाश्वत हैं। परम पुरुष का रूप हाथ पांव आदि से युक्त होता है, लेकिन उनके हाथ पांव भौतिक नहीं है। ये विचित्र वर्णन है भगवान के विषय में। और भक्तगण जानते हैं कि ब्रह्म श्री कृष्ण का स्वरूप रंच मात्र भी भौतिक नहीं है, वे दिव्य गुणों से युक्त है, उनका स्वरूप दिव्य है। जब कोई व्यक्ति भक्ति पूर्वक उनमें लगता है तभी वह उन्हें समझ सकता है। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने न संत सदैव हृदय से विलोकयंती। साधु पुरुष उनको देखता है, कैसे देखता है? प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने न, प्रेम रूपी अंजन अपने नेत्र में लगाता है, प्रेम के द्वारा उनको समझता है। ऐसे नहीं, भगवान अद्भुत हैं। इस रहस्य को जानने के लिए थोड़ा स्थिर होकर विचार करना पड़ेगा कि हमारे जैसे भगवान का प्राकृत शरीर नहीं है, असमर्थ माया जड़ पदार्थों से बना हुआ, जो असीमित शक्तिवान है, जिनके पास अनलिमिटेड ज्ञान है, बल है, सौंदर्य है। ऐसा नहीं कि वो कभी बूढ़ा हो जाएंगे, कभी उनमें के शरीर में झुर्रियां पड़ जाएगी, कभी शरीर कमजोर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वो शाश्वत गुण संपन्न है, उनका हर चीज शाश्वत है, यह विशेष रूप से समझना चाहिए। कभी कभी शास्त्रों में जो विपरीत गुणों का वर्णन होता है भगवान का, तो इसको पढ़कर अच्छे अच्छे विद्वान भी भ्रम में पड़ जाते हैं। कभी कभी भक्त लोग भी भ्रम में पड़ जाते हैं, क्या वर्णन है। बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधिनाना। बिना पैर के चलता है, बिना हाथ के काम करता है, बिना आंख के देखता है, बिना कान के सुनता है, बिना मुंह के खाता है। ये विचित्र बात है, नहीं समझने के कारण लोग कहते हैं कि भगवान का कुछ हाथ पैर है ही नहीं, वो निराकार है। ये ऐसी बात नहीं है, इसको समझने का प्रयास करना चाहिए। एक बार दिल्ली की घटना है, महाराज श्री एक पंडाल प्रोग्राम के लिए गए थे प्रवचन करने। सुनाते हैं कभी कभी, मैं तो वहां नहीं था लेकिन उनके मुख से सुना हूं। प्रवचन के बाद कुछ लोग प्रश्नोत्तर करने लगे, तो एक व्यक्ति यही बोलने लगा, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधिनाना। तो भगवान तो निराकार है, आप तो अपने प्रवचन में भगवान के रूप गुण उनके सौंदर्य का वर्णन कर रहे थे। कहे हाँ, भगवान निराकार भी हैं और साकार भी हैं। तो मतलब कि भगवान का जो आकार है वो प्राकृत नहीं है, सब अप्राकृत है। हम लोगों जैसा उनका हाथ पैर कमजोर नहीं है, और अगर भगवान बिना पैर के चले तो इसमें क्या दिक्कत है? बिना पैर के कैसे चलेंगे, बिना आंख के देखें तो क्या दिक्कत है? यही अंतर है हम में और उनमें। हम केवल आंख से देखते हैं, वो सब जगह से देखते हैं। अंगानि जस सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरम जगन्ति। लोग रोज दर्शनार्थी में गाते हैं, अंगानि जस सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति। भगवान की प्रत्येक इंद्रिया प्रत्येक इंद्रियों का काम करता है। ऐसा नहीं कि इस आंख से ही देखेंगे, वो पीछे से भी देख लेते हैं। महाभारत युद्ध में अर्जुन के विपक्षियों को भी देखते थे और अर्जुन को भी देखते थे। तो भगवान बिना आंख के भी देख लेते हैं। तो तर्क करता गया, बिना आंख के कैसे देखेंगे, बिना पैर के कैसे चलेंगे? तो कहे भगवान की बात तो छोड़ दो, मैं वृंदावन से इस पंडाल में बिना पैर के चला आया, कार पर बैठकर एक डेग भी नहीं चला, आ गया कि नहीं? जब हम बिना पैर का प्रयोग किए यहां आ सकता हूं, तो भगवान हमसे भी कमजोर है क्या कि बिना पैर के नहीं चल सकते हैं? अब नहीं समझ पाया तो ये उदाहरण देना पड़ा। तो जब हम पैर के अलावा भी दूसरा साधन चलने का बना सकते हैं तो भगवान नहीं बना सकते? भगवान को ज्यादा कमजोर समझते हो? बिना पैर के भी चल सकते हैं तो क्या दिक्कत है? तो इस प्रकार भगवान सर्वसमर्थ है और उनको हर इंद्रियों को अलग अलग कामों में नहीं लगाना है। किसी भी इंद्रियों से कुछ भी करते हैं, वो आंख से देखकर खा लेते हैं और खाने के बाद भी हूबहू उतना छोड़ देते हैं। गिरिराज धरण लीला में रसिक भक्त लोग बतलाते हैं कि जब गिरिराज जी का पूजन प्रारंभ हुआ तो भगवान भी पूजक में थे, पूजा कराने वालों में। तो ब्रजवासियों से कहते थे कि चलो यहाँ भोग अर्पित करो, कोई देवता न कोई मूर्ति, पहाड़ को भोग लगा रहे हैं। कह रहे कृष्ण तुम पागल हो गया और सबको पागल कर रहा है, कुछ तो मूर्ति बनाओ, स्थापना करो, कहाँ भोग लगाना है तो लगाओ ना, यहाँ रखो अपना सारा पकवान, हलवा पूरी मिठाई चावल दाल सब चीज रखो। सब रखा गया तो मथुरा के पंडितों से पूजा प्रारंभ कराए, भगवान भोग अर्पित किया गया, सब लोग हाथ जोड़े। तब तक भगवान ही गिरिराज जी के ऊपर प्रकट होकर कहे हाँ दो लाओ, तो भगवान इधर गोप सखाओं के साथ कहते हैं देखो प्रकट हो गया गिरिराज, और ये सचमुच ये देवता प्रकट हो गया। तो सब खुश हो गए और उनको पकड़वाने लगे, तो टोकरी के टोकरी पूरी खाने लगे, सारा खीर पीने लगे, सारा कढ़ी सब्जी सब बर्तन खाली। तब गोप सखा कहते हैं अरे कन्हैया ये तुम्हारा देवता है कि राक्षस है, यार सब खा गया, हमारे लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। इंद्र का पूजा करते थे तो हमको प्रसाद भी मिलता था, ये सारा बर्तन खाली कर दिया, कैसा देवता है? तो कहते कोई बात नहीं, इनको भोग लगाओ, घर के लोग खाते हैं तो खिलाते नहीं हो, तो काम भर खाते हैं कि पूरा सब खा जाते हैं, यार तू तो विचित्र देवता प्रकट हो गया, कैसा देवता प्रकट किए हो? तो कहे चलो सब लोग दंडवत करो, प्रणाम करो। तो सब लोग जब प्रणाम करके उठे तो सारा बर्तन भरा हुआ था, जय हो कहते हैं। जब प्रणाम करके उठे तो सारा बर्तन एकदम जैसे पहले था वैसे भरा हुआ। तो भगवान कहे देखा प्रसाद भरा है, मिला ना? कहे यार ये तो अजीब देवता है, खा भी गया और दे भी दिया, सबकी श्रद्धा हो गई। तो इस प्रकार भगवान सचमुच खाते हैं और खाने के बाद भी हम भूखों के लिए देते भी हैं, वो है प्रसाद, उनकी कृपा। और श्रील प्रभुपाद कहते थे कि देखने से पता नहीं चलता है लेकिन वास्तव में भगवान की कृपा उस अर्पित प्रसाद के अंदर आ जाती है, वो कृपा उभर कर आती है उसके अंदर। उदाहरण देते हैं जैसे नग्न तार में देखने से नहीं पता चलता कि इसमें करंट है कि नहीं है, लेकिन जरा टच करके देखो जिसमें करंट है उसका अलग प्रभाव है। तो इस प्रकार भगवान स्वीकार करते हैं, खाते हैं और फिर वैसा छोड़ देते हैं, अपने नेत्र से देखकर खा लेते हैं, सर्वसमर्थ ईश्वर हैं। एक जिज्ञासु व्यक्ति को इन सब बातों को विशेष रूप से जानना चाहिए। इस प्रकार ब्रह्मा को लगा कि भगवान विष्णु सत्य ज्ञान और आनंद के आगार हैं, वे इन तीन दिव्य स्वरूपों से युक्त हैं और उपनिषदों के अनुयायियों के आराध्य हैं। ब्रह्मा ने अनुभव किया कि गौ बछड़ों और लड़कों को जो विष्णु रूप प्राप्त हुआ है वे किसी जोगी या देवता में निहित विशेष व्यक्ति का प्रदर्शन नहीं है, विष्णु मूर्तियों के रूप में गौवें बछड़े और बालक दिख रहे हैं, साक्षात विष्णु हैं। भौतिक पदार्थों से दिया जा सकता है, एक उदाहरण दे रहे हैं, जो कई रूपों में प्रतिबिंबित होते हैं। इसी तरह सूर्य अनेक जल पात्रों में प्रतिबिंबित होता है किंतु पात्रों में दिखने वाले प्रतिबिंब सूर्य नहीं होते। इन प्रतिबिंबों में सूर्य का वास्तविक प्रकाश और ऊष्मा नहीं रहता है, यद्यपि यह सूर्य की तरह दिखता है किंतु कृष्ण ने जितने सारे स्वरूप धारण कर रखे थे सबके सब वही थे, विष्णु थे। तो हमें चाहिए कि यथा संभव हम प्रतिदिन श्रीमद् भागवत के बारे में चर्चा करें और हर बात स्पष्ट हो सके इसके लिए भागवत समस्त वैदिक वांग्मय का सार है, निगम कल्प तरोर गलितम फलम, इसे व्यास देव ने लिखा है। आत्मज्ञान प्राप्त कर चुके महामुनि के द्वारा यह रचित है, अतः हम भागवत का जितना भी अध्ययन करेंगे ज्ञान उतना ही स्पष्ट होता जाएगा। इसका प्रत्येक श्लोक दिव्य है, श्रील प्रभुपाद कहते हैं, इसलिए प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। नित्यम भागवत सेवया, धीरे धीरे पढ़ने से भगवत प्रबोध होता है। ब्रह्मा जी देख रहे हैं, भगवान के स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं, इसको सुखदेव गोस्वामी डिटेल वर्णन करते जा रहे हैं। एवं सक्री ददर्शा ज पर ब्रह्मात्मनो खिलान जस्य भाषा सर्वमिदं विभाति स चराचरम। इस प्रकार ब्रह्मा जी एक साथ ही देखे कि सबके सब पर ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण के स्वरूप हैं, जिनके प्रकाश से सारा जगत प्रकाशित हो रहा है। विष्णु रूप में देख रहे हैं, फिर कृष्ण रूप में देख रहे हैं, अचानक सारा जगत जिनसे प्रकाशित हो रहा है, सारा जगत जिनसे उद्भूत होता है, जिनका पालन होता है, वही श्री कृष्ण ही इन गोप बच्चों के रूप में, बछड़ों के रूप में है। ततो तिकुतको बीतिश मितई कादशेन्द्रिय तद्धामना बुद जस्तुष्णिम पूर्वे व्यंती व पुत्रिका। अत्यंत आश्चर्यमय दृश्य देखकर ब्रह्मा तो चकित हो गए, बिल्कुल आश्चर्य में पड़ गए, और इनकी सारी इंद्रियां एकदम स्तब्ध रह गई, कुछ काम ही नहीं कर रहा था। आंख देखकर भी एकदम चकित, क्या मैं देख रहा हूं। भगवान के तेज से वे एकदम स्तब्ध होकर मौन हो गए, कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे, जड़वत खड़ा हो गए, मानो ब्रज के अधिष्ठात्री देवता के पास एक पुतली खड़ी हो, कुछ नहीं बोल पा रहे थे, एकदम मूर्ति जैसा खड़े हो गए। दिव्य आनंद से ब्रह्मा स्तब्ध हो गए। मुह्यंती जत सूर्य, जिनके दर्शन से, जिनको समझने में बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं, आश्चर्य चकित हो जाते हैं। तो ब्रह्मा की सारी इंद्रियां स्तब्ध हो गई और वे कुछ भी कह पाने में असमर्थ हो गए। ब्रह्मा ने अपने आप को एकमात्र शक्तिमान देवता मानकर सर्वोच्च समझ रखे थे, किंतु उनका यह गर्व अब चूर चूर हो गया, एकदम शांत हो गए। अतः ब्रह्मा कभी ईश्वर, कृष्ण या नारायण की समता नहीं कर सकते, उनको बिल्कुल समझ में आ गया। यही नहीं, वेदों में जो उल्लेखनीय है, एको नारायणो आसी न ब्रह्मा नेशान नेशान, सृष्टि के प्रारंभ में केवल नारायण ही थे, न ब्रह्मा थे न शिव थे, कोई अस्तित्व नहीं था। इसलिए जो भी अपने जीवन के अंत समय में नारायण का स्मरण करता है, उसे वास्तव में जीवन की सिद्धि प्राप्त होती है, अंते नारायण स्मृति। इस प्रकार ब्रह्मा भगवत स्वरूप देखकर मुग्ध हैं, और फिर आगे बड़े श्लोक में ब्रह्मा की अवस्था का वर्णन सुखदेव गोस्वामी करते हैं। अब ब्रह्मा के सामने जो असमर्थता, अज्ञान, मोह छाया है, वो किस रूप में दूर हो रहा है। भगवान अब कृपा करके उनको प्रबोध दिए, और ब्रह्मा जब समझ गए भगवत स्वरूप को, तो उनके चरणों में कातर होकर प्रार्थना करने लगे। एक बड़े श्लोक में ब्रह्मा की स्थिति का वर्णन करते हैं सुखदेव गोस्वामी। इति रेशे तर्के निज महिमनी स्व प्रतिमिति के परत्रा जातो तन निरसन मुख ब्रह्म कमितौ अनिशेपि द्रष्टुम किमिदमिति वा मुह्यति सति चछादा जो ज्ञात्वा सपदि परमो जाजवनिकाम। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि इति ईशे तर्के निज महिमनि स्वप्रतिमिके, यह जो भगवान का स्वरूप है वो तर्क से परे है। यह भगवान का स्वरूप जिसको ब्रह्मा देख रहे हैं, मन ही मन विचार कर रहे हैं कि इसमें कोई बुद्धि लगाने से काम नहीं चलेगा, यह तर्क का विषय नहीं है। इति अतर्के ईशे निज महिमनी स्वप्रतिमिके। इस तरह अतर्के या तर्कातीत स्वरूप है, इस पर अपनी बुद्धि लगाने से काम नहीं चलेगा। इति अतर्के ईशे निज महिमनी स्वप्रतिमिके। ये सर्वेश्वर भगवान की महिमा तर्क का विषय नहीं है। कम प्राजता जातः अतत निरसन मुख ब्रह्म इतौ द्रष्टुम अनिशे अपि किम इदमिति। इस प्रकार ब्रह्मा भगवान के स्वरूप को देखकर अनुभव कर रहे हैं कि ये स्वयं प्रकाश है, आनंद स्वरूप है, मायातीत है, अनात्म पदार्थ है, और इनको किसी भी अवस्था में अपने बुद्धि से नहीं समझा जा सकता है। और ब्रह्म इतौ द्रष्टुम अनिशे अपि किम इदमिति। ब्रह्म इसको देखने में असमर्थ होने पर भी यह क्या है, इस प्रकार वा मुह्यति सति अथवा मूर्छित होता हुआ आजा ज्ञात्वा परम सपदी अजाम जवनिकाम चछाद। ब्रह्मा यह जानकर कि यह परम पुरुष हमारे बुद्धि से परे का विषय है, तो ब्रह्मा की अवस्था देखकर श्री भगवान अब विशेष कृपा पूर्वक ब्रह्मा को अपना प्रबोध कराए। यद्यपि वो समझने का कोशिश कर रहे थे लेकिन असमर्थ अनुभव करने लगे, अपने बुद्धि से नहीं समझ पाए, यहाँ तक कि भगवान के उन महिमामय रूपों को देखने में भी असमर्थ हो गए। बार बार बुद्धि लगाते थे कि वास्तव में क्या है, एक कृष्ण है कि इतने रूपों में कृष्ण की अनुभूति क्यों हो रहा है। आप सुने इसके पहले सुबह के सत्र में कि भगवान बलराम को भी आश्चर्य हो गया ब्रह्मा की बात क्या है। एक बार भगवान बलराम भी चकित हो गए कि क्या है, देवता की माया है कि असुरों की माया है, किसकी माया है, ऐसा क्यों हो रहा है। भगवान बलराम जब भ्रम में पड़ गए तो ये ब्रह्मा तो बहुत नीचे की चीज है। तो ब्रह्मा की बुद्धि जब काम नहीं की तो आंख बंद कर दिए, एकदम समझ नहीं पाए। भगवान कृष्ण ब्रह्मा के इस मोह और असमर्थता को जान गए कि बेचारा अपने बुद्धि से नहीं समझ पा रहा है, तो बिना किसी प्रयास के ब्रह्मा कुछ कह भी नहीं पाए कि हे प्रभु हमें ज्ञान दीजिए, हम आपके बालक हैं। कुछ नहीं कह पाए, उसके पहले ही बिना प्रयास के उन माया का पर्दा हटा दिए। जो माया की जवनिका ब्रह्मा के ज्ञान में नेत्रों में छाई हुई थी वह जवनिका को हटा दिए, पर्दा हटाए, इसके बाद ब्रह्मा को ज्ञान हुआ। ततोर वा प्रतिलब्धाक्ष कह परे तवदुत्थित कृच्छाद उन्मिल्य वही दृष्टि आचेष्टे दम सहात्मना। जब ब्रह्मा जी को ज्ञान हुआ पर्दा हटने के बाद, तो ब्रह्मा जी तो एकदम आंख बंद करके बेहोश गिर पड़े थे, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। तो फिर अपने आप को संभाल कर उठे और बड़े कष्ट से नेत्र खोले, किसी तरह उनके शरीर में चेतना आई और जब दिखाई देने लगा सब कुछ, तो फिर ब्रह्मा जी देखते हैं वृंदावन के स्वरूप को। सब पदे वा भीत पश्यन दिशो पश्यत पुरस्थितम वृंदावनम जना जीव्य द्रुमा किरणम समाप्रियम। जब ब्रह्मा जी होश संभाले फिर से उठे तो उठ करके देखते हैं नेत्र खोलकर, तो चारों तरफ बहुत सुंदर वृंदावन का दृश्य दिखाई दे रहा है। वृंदावनम जना जीव्य उपाकिरणम समाप्रियम। वृंदावन सबके लिए प्यारा है, जिधर भी देखिए उधर जीवों को जीवन देने वाले फल फूल वृक्ष लहरा रहे हैं, सब जगह सुखमय वातावरण है। वास्तव में ये वृंदावन का परमानेंट स्वरूप है। आज भी चाहे कुछ भी वृंदावन की अवस्था बिगड़ी हुई दिख रही है, फिर भी संपूर्ण विश्व से ज्यादा सुखमय वातावरण वृंदावन है। आज भी जन जिव्या दुमा किरणम का अर्थ है कि वृंदावन में वृक्ष वनस्पतियां और सभी ऋतुओं में सुख देने वाली होती हैं। वृंदावन में ऐसी व्यवस्था है, ऐसा नहीं कि वृक्ष एक ऋतु में सुहावने लगेंगे और बाद में पतझड़ आ जाएगा, प्रत्युत समस्त ऋतु परिवर्तनों में सुहावने लगते हैं। वृक्ष और वनस्पति हर एक के लिए वास्तविक जीविका के साधन है, सर्व काम दुघा मही। वृक्ष और वनस्पति जीवन के वास्तविक साधन प्रदान करते हैं, इस प्रकार का सुख उद्योग नहीं करता, प्रभुपाद लिखते हैं। और एक विशेष बात है कि जिस समय भगवान वृंदावन में उपस्थित थे, सभी ऋतुओं का फल सब समय प्राप्त होता था। उस समय वृंदावन में पतझड़ नहीं होते, सभी वृक्ष हमेशा लहराते हुए दिखते, हरा भरा, और सभी वृक्षों में फल दिखता था। वृंदावन के उस सुंदर सौंदर्य, जो अप्राकृत दिव्य सौंदर्य है, उसको भगवान दिखाए ब्रह्मा को, ब्रह्मा जी देखे। एक समय की घटना है, आप बांके बिहारी श्री विग्रह को देखे होंगे, सुने होंगे, वृंदावन में बड़े प्रसिद्ध डीटी हैं श्री बांके बिहारी जी, और उनकी आराधना करने वाले थे, उनको प्राप्त करने वाले स्वामी हरिदास निधिवन में। तो एक समय जब स्वामी हरिदास जी थे, बांके बिहारी का प्राकट्य हो चुका था, मंदिर की आराधना पूजा भी चल रही थी, तो उस समय अकबर बादशाह था, वह कुछ ब्राह्मणों कुछ भक्तों के कहने से स्वामी हरिदास जी के पास आया। कई बार आता था क्योंकि तानसेन स्वामी जी के शिष्य थे और उसके दरबारी कवि थे, तो उनके संपर्क से भी अकबर आया करता था। तो एक बार आया और आकर के बहुत प्रार्थना करने लगा कि स्वामी जी हमें भी कुछ अवसर दीजिए सेवा करने का, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं, आपके वृंदावन के या आपके ठाकुर जी का क्या हम सेवा करें। कहने कोई जरूरत नहीं, यहाँ कोई सेवा की अवसर नहीं है। तो कहे फिर भी हमें कुछ अवसर दीजिए। बहुत बार बार जब कहने लगा तो कहे देखो केसी घाट में जमुना के तट पर एक घाट का पत्थर किनारे टूट गया है, आप उसका मरम्मत करा दो। तो कहा ठीक है, बड़ा खुश हुआ कि अवसर मिला। तो स्वामी जी कहे कि जाओ पहले निरीक्षण कर लो किधर है, कैसे टूटा है, एक भक्त को भेजे जाओ दिखा कर लाओ। तो जब गया अकबर देखता है तो वो घाट के जो पत्थर हैं विचित्र कीमती रत्नों का, हीरा जवाहरात सोने, बहुत सुंदर कीमती पत्थर लगे हुए हैं और उसका एक कोना टूट गया है। तो देख कर आया तो कहा स्वामी जी मैं सारी बादशाही बेच दूंगा तब भी मरम्मत नहीं हो पाएगा, इतने कीमती पत्थर लगे हुए हैं, बाप रे। तो कहा तो तुम सेवा कर सकते हो, तुम्हारे बस की बात नहीं है, ये अप्राकृत धाम है और ये भगवत संपदा से युक्त है, तुम्हारे जैसे प्राकृत कीट पतंग यहाँ क्या कर सकते हैं सहयोग। तो स्वामी जी के कृपा से अकबर भी देख लिया उस अप्राकृत धाम की एक झलक को। तो वृंदावन अद्भुत है, वहां समा प्रियाम का अर्थ है सब समय प्रिय लगता है। यद्यपि आज भी ब्रज में धूल धूल चारों तरफ रज ही दिखते हैं और बहुत ज्यादा हरा भरा वृक्ष नहीं है, फिर भी कभी उदास नहीं लगता है वृंदावन। दूसरे जगह का खूब सुंदर सौंदर्य शोभा, खूब अच्छा वातावरण और वृंदावन का वह ब्रज रज कटीली झाड़ियां इतनी सुंदर इतनी महत्वपूर्ण लगती हैं, वहां का वातावरण इतना अच्छा लगता है कि उससे तुलना आज भी कहीं किसी स्थान से नहीं किया जा सकता, इतना दिव्य है। तो ब्रह्मा जी देख रहे हैं चारों तरफ सुंदर वातावरण है, सबके लिए प्यारा है, जिधर देखो वही जीवन देने वाला पदार्थ, वृक्ष दिख रहे हैं, फल फूल दिख रहे हैं, हरे हरे पत्तों से लहराते हुए वृक्ष शोभा पा रहे हैं। यत्र नैसर्ग दुर्वैरा सहासन निर्मिगादय मित्राणि वाजितावास द्रुत रुतर्ष कादिकम। वहां भगवान कृष्ण की लीला भूमि के कारण वृंदावन में क्रोध तृष्णा आदि दोष नहीं है, वहाँ परस्पर सब में प्रेम है, वहाँ कोई बैर नहीं है, किसी प्रकार का दोष नहीं है, सभी पशु पक्षी आपस में प्रेम कर रहे हैं, सब हिल मिल कर रहते हैं, आनंद से रहते हैं, कोई वहाँ हिंसक प्राणी नहीं है, सभी में प्रेम है, यह देख रहे हैं ब्रह्मा जी। अब जब दोबारा ब्रह्मा जी का होश आया, बेहोश थे, जब देखने लगे तो वृंदावन का सौंदर्य का दर्शन कर रहे हैं, बहुत सुंदर सौंदर्य का वर्णन सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं, वृंदावन जो ब्रह्मा जी की दृष्टि में दिख रहा है उसका वर्णन कर रहे हैं। तत्रो बहत पशु वंश शिशुवत वनाट्यम ब्रह्मा द्वयम परमानंत मगाध बोधम वत्सान सखी निवपुरा परितो विचिन्वन एकम सपाणि कवलम परमेष्ट चष्ट। ब्रह्मा जी वृंदावन का दर्शन कर रहे हैं, अद्वितीय ब्रह्म रूप गोप वंश के बालक सा नाट्य करता हुआ अपने सखाओं के साथ श्री भगवान को देख रहे हैं, जो इधर उधर नृत्य कर रहे हैं, घूम रहे हैं, और अपने बाएं हाथ में दही भात का कवल लिए हुए बछड़ों को ढूंढ रहे हैं और अकेले घूम रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं। अब कोई बछड़ा नहीं दिख रहा है, कोई बच्चे नहीं दिख रहे हैं, एक श्री कृष्ण अपने हाथ में दही भात का कवर लिए हुए खोज रहे हैं। जो पहले देखे थे, एक साल पहले जिस रूप को देखे थे, वही रूप ब्रह्मा जी देख लिए। दृष्ट्वा त्वरेण निज धो रणतो त्वतिर्ज पृथ्व्याम बपुह कनक दंड मिवाभिपात्य स्पृष्ट्वा चतुर मुकुट कोटि भिरंग्रि जुग्मम नत्वा मृदसु सुजलैर कृताभिषेकम। ब्रह्मा जी जब भगवान को इस रूप में देखे तो अपने वाहन हंस से कूद कर पृथ्वी पर दंडवत प्रणाम किए। दृष्ट्वा त्वरेण निज धो रणतो अवतीर्य पृथ्व्याम बपु कनक दंड मिवाभिपात्य, मानो सोना का दंड गिर पड़ा। ब्रह्मा जी का शरीर बहुत सुंदर चमकता था, सोना जैसे चमकते हुए शरीर से पृथ्वी पर दंडवत प्रणाम किए। स्पृष्ट्वा चतुर मुकुट कोटि भिरंग्रि जुग्मम, भगवान के दोनों चरणों में लौट गए, अपने मुकुट को पृथ्वी पर रखते हुए नत्वा मृदस्रु जलई रकृताभिषेकम, भगवान के श्री चरणों में अपना मस्तक रखते हुए ब्रह्मा जी नमस्कार करते हैं और आनंद के आंसुओं की धारा से भगवान के चरण धो दिए। इतना अजस्र आंसू गिराने लगे, रोने लगे, भगवान के चरण का अभिषेक हो गया। उत्थायोत्थाय कृष्णस्य चिरस्य पादयो पतन आस्ते महित्वम प्रागदिष्टम स्मृत्वा स्मृत्वा पुनः पुनः। ये भगवान कृष्ण के पहले देखी हुई महिमा का बार बार स्मरण करते और चरणों पर बार बार गिरते, फिर संभल कर उठते, उठने के बाद फिर नहीं संतोष होता तो फिर गिर पड़ते। इस प्रकार ब्रह्मा जी बहुत देर तक आंख खोलते अजस्र आंसू के कारण ठीक से देख भी नहीं पाते थे, बार बार भगवान के चरणों में गिर जाते थे, बार बार गिरते थे, बार बार संभलते थे, बार बार गिरते थे, भगवान का चरण पकड़ कर छोड़ना नहीं चाहते थे। फिर धीरे धीरे अपने नेत्रों के आंसू को पोंछे और प्रेम मुक्ति के एकमात्र उद्गम भगवान के सामने सिर झुकाकर थर 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 कांपने लगे, एकदम बच्चों की तरह, डरे हुए गाय की तरह अंजलि बांध कर बड़ी एकाग्रता से श्री भगवान के चरणों में गदगद वाणी से स्तुति करने लगे। सनई रथोत्थाय विमिज्य लोचने मुकुंद मुद्वीक्ष विनम्र कंधर कृतांजलि प्रसयवान समाहित सवे सवे पथुर गद गदयी लते लया। श्री भगवान के चरणों में गिरकर अंजलि बांध लिए, हाथ जोड़ लिए, कृतांजलि प्रसयवान एकदम विनम्र भाव से समाहित होकर विनम्रता पूर्वक एकाग्रता पूर्वक और गदगद वाणी से श्री भगवान के सामने स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बड़े विनम्र भाव से श्री भगवान के चरणों में स्तुति किए हैं और वह स्तुति श्रीमद् भागवतम में ब्रह्मा के द्वारा सबसे बड़ी स्तुति है। 40 श्लोकों में स्तुति किए हैं, वह अत्यंत महत्वपूर्ण स्तोत्र है। इसलिए अति संक्षेप में कुछ श्लोकों का वर्णन कल किया जाएगा। श्रील प्रभुपाद ब्रह्मा जी के इस अवस्था का वर्णन करते हैं कि प्रसन्नता के मारे ब्रह्मा अश्रुपात करने लगे और अपने आंसुओं से उनके चरणों को धो दिए। वे कृष्ण की अद्भुत लीलाओं का स्मरण करके बार बार गिरते और उठते थे, दीर्घ काल तक नमस्कार करते रहे। ब्रह्मा जी किसी तरह अपने को संभाल पाए, अश्रुओं को पोछे। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि लोचने शब्द इंगित करता है कि उन्होंने दोनों हाथों से अपने चारों मुख की दो दो आंखों को पोछा। जो आंसू बह रहे थे, आठों नेत्रों से आंसू बह रहे थे। अपने समक्ष भगवान को देखकर ब्रह्मा जी अत्यंत विनय आदर और मनोजोग से स्तुति करने लगे। इस प्रकार श्री ब्रह्मा जी भगवान के चरणों में स्तुति किए हैं। उस स्तुति का संक्षिप्त कथा कल सुनेंगे और इसके साथ ही कल कथा की पूर्णाहुति समाप्ति होगी। सम्यक रूप से कथा को प्राप्त करेंगे। हरे कृष्ण, जय श्रील प्रभुपाद।